ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन, उर्मिला बहन ने पंजाब जोन में पिछले 17 वर्ष बहुत सेवाएं की और उसके बाद अनगिनत लेख लिखते हुए बहुत अच्छी बातें ज्ञानामृत के थ्रू भी आपके पास पहुंचती हैं और 7-8 वर्षों से आप शांतिवन में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी किशोर अवस्था में ही आप इस ज्ञान के संपर्क में आए और अब पूरे भारतवर्ष में अनेक आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाने में, बाबा की इस अमूल्य सेवा में आपका सक्रिय योगदान है, अपने वाचा के माध्यम से भी और लेखनी के माध्यम से भी। हर महीने जो आपके पास ज्ञान अमृत पत्रिका पहुंचती हैं, आजकल आप उसमें आर्टिकल्स देने के साथ साथ सह संपादिका का रोल भी अदा कर रहे हैं, तो आपसे सुनेंगे हम उर्मिला बहन से कि साइलेंस की शक्ति कैसे बढ़ाएं, साइलेंस पावर कैसे बढ़ाएं।
ओम शांति। एक बार फिर बोलिए ओम शांति। आज का विषय तो आप सबको मालूम पड़ ही गया। अब बड़ी विचित्र बात है कि शांति की शक्ति को वाणी के द्वारा समझाया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि शांति की शक्ति क्या है। बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे बरसात गिरती है, गिरती तो एक एक बूंद के रूप में ही है ना, लेकिन एक एक बूंद गिरते 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 तालाब नदी सब कुछ भर जाता है और कई बार तो पानी इतना हो जाता है कि बाढ़ का रूप ले लेता है। फिर कई गांव खेत भी डूब जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, देखो पानी में कितनी शक्ति है, गांव भी बहा दिया खेत भी बहा दिया। पानी की शक्ति कैसे बनी? बूंद बूंद जमा होते होते एक बूंद में शक्ति नहीं थी, लेकिन इकट्ठा होकर के पानी एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया। इसी तरह से धन की शक्ति। हम लोग एक बार किसी शहर में गए थे तो एक मंदिर था, मंदिर का आगे जो गेट होता है ना, तो गेट के ऊपर एक महिला चक्की पीस रही थी, उसका फोटो बनाया हुआ था। तो हमने कहा भाई मंदिर से इस माता का क्या कनेक्शन? तो कहा इस माता ने आटा पीस पीस करके पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से ये मंदिर बना। कहां मंदिर और कहां आटा, आटे की पिसाई कितनी मिलती होगी हाथ की चक्की से? 10 पैसे भी उस जमाने में नहीं मिलती होगी, लेकिन उसने एक एक पैसा दो दो पैसा इकट्ठा किया तो वो धन की शक्ति बन गई और उससे मंदिर बन गया और माता देखो अमर हो गई। कितने समय के बाद भी लोग उसे याद कर रहे हैं। तो ये है धन की शक्ति। और इसी तरह से संगठन की शक्ति। कोई व्यक्ति कोई कार्य शुरू करता है तो पहले तो एक दो ही होते हैं। हमारे बाबा ने जब कार्य शुरू किया तो अकेले बाबा ही तो थे शुरू में, बाद में 2, 4, 6, 8 होते होते आज हम 9 लाख हो गए। तो जब अकेला होता है तो उसको शक्ति नहीं कहा जाता, लेकिन जब लोग जुड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई इनका संगठन बहुत बड़ा है, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर उस संगठन की आवाज में ताकत हो जाती है। और आपने देखा होगा कि आजकल लोग संगठन बना रहे हैं, रिक्शे वालों का अलग संगठन होता है, मजदूरों का भी संगठन होता है, शिक्षकों का भी, सबका होता है ना, क्योंकि एक एक जुड़ करके शक्ति निर्मित होती जाती है। तो ऐसे ही शांति की शक्ति हमारे विचार जो पीसफुल है वो जब हमारे भीतर एकत्रित होते जाते हैं तो विचारों में सिद्धि आ जाती है। विचार ऐसे बन जाते हैं कि कैसी भी परिस्थिति में हमारी शांति उखड़ती नहीं है। हम इतने जम जाते हैं, इतने अचल अडोल हो जाते हैं कि बातें आती हैं हमें हिलाने की कोशिश करती हैं, परिस्थितियां आती हैं उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे भीतर शांति इतनी जमा हो चुकी है, हम इतने शांत चित्त, सरल चित्त, उदार चित्त, नम्र चित्त बन चुके होते हैं कि बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती, हमें हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बातें हिल जाती हैं, लेकिन हम नहीं हिलते। तो इसको कहते हैं भाई ये बहुत शांत आत्मा है, इसका शांति का लंबे समय का अभ्यास है, इसके पास बड़ी शांति की शक्ति जमा है, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप इसके मन को डावाडोल नहीं कर सकते, ये बड़ी एकाग्र आत्मा है। कहते हैं ना ऐसे, जैसे आपने शास्त्रों में उदाहरण सुने होंगे, कोई ऋषि तपस्या कर रहा था, राजा ने पुकारा वो नहीं हिला, गुस्से में आकर के उसके गले में सांप डाल दिया वो फिर भी नहीं हिला, उस पे कीचड़ उछाला फिर भी नहीं हिला, सुनिए ना कहानियां। तो ऐसी कौन सी पावर है उनके पास? शांति की शक्ति। अंदर में मन इतना स्थिर है और नीरस रूप में स्थिर नहीं है, भीतर ही भीतर रस आ रहा है उसको। तो जब हम बाबा की याद में अंदर ही अंदर शांति का रस लेने में, शांति का रस जमा करने में इतने मशगूल हो जाते हैं, कुछ भी होता रहे लेकिन हमारा मन लगा हुआ है, हटा नहीं सकता कोई उसको, हमें शांति का बल प्राप्त हो रहा है, तो ये जब लंबे काल का अभ्यास होता है ना तो शांति की शक्ति बन जाती है, फिर संकल्पों में सिद्धि आ जाती है, फिर हम जो भी सोचते हैं वो सफल हो जाता है, फिर हम जो भी संकल्प करते हैं वो साकार में सामने आ जाता है। तो शक्तिशाली मन, शक्तिशाली संकल्प और उनके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली कर्म, ये साइलेंस की शक्ति का परिणाम है। आप में से बहुत भाई बहन तो आज आए होंगे, लेकिन जो कल आए थे उन्होंने बाबा के भोग का संदेश सुना होगा। मैं रिपीट कर देती हूं, जब संदेशी संदेश लेके गई तो उसने देखा कि बाबा एक पेड़ के नीचे, वतन में भी पेड़ इमर्ज होता है, पेड़ के नीचे आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे, जैसे आराम कुर्सी पे ऐसे पीठ लगा के बड़े आराम से बैठे होते हैं ना। तो संदेशी भोग लेके गई, बाबा ने कहा आओ बच्ची आप भी मेरी तरह ही आके बैठ जाओ। तो संदेशी कहती है बाबा मैं तो भोग लेके आई हूँ, ये भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, आओ मेरे पास आके बैठ जाओ। तो मैं भी ऐसे बैठ गई। तो बाबा ने कहा बच्ची बाबा जो ऐसे बैठा हुआ है ना, तो इस बैठक से बाबा बच्चों को कुछ संदेश देना चाहता है। और बाबा ने क्या संदेश दिया कि देखो अभी पंजाब जोन के बहुत भाई बहन सेवा में आएंगे, शांतिवन के भाई बहन तो सेवा में हैं ही, और भी बहुत सारे लोग बाबा की सेवा में अपना सहयोग देते हैं। तो बाबा ने कहा जो भी जिस भी सेवा में हो, और इस ग्रुप में भाई बहन भी बहुत आएंगे जिनकी हमको सेवा करनी है, तो बाबा ने कहा जो भी जहां भी जिस सेवा में हो ना वो क्या करे। बाबा ने ऐसी बैठक क्यों दिखाई? शांति की शक्ति को धारण करके सेवा करे, शांति के वाइब्रेशन फैलाए, शांति की अनुभूति सबको करवाए। भले सेवा है, सेवा करनी है और सेवा में हमको रहना है, और स्थूल सेवा भी है, कोई भोजन परोसेगा, कोई पानी की सेवा करेगा, लेकिन बाबा ने अपनी बैठक दिखा करके क्या बताया कि सब कुछ करते हुए भी हमारा मन पीसफुल रहना चाहिए, जिसको कहते अंदर से पीसफुल और बाहर से एक्टिव। भीतर से जो पीसफुल होता है ना, वो बाहर से बहुत एक्टिव रह सकता है, एक्यूरेट रह सकता है, पंक्चुअल रह सकता है और सबको संतुष्ट कर सकता है। लेकिन जो भीतर से पीसफुल नहीं है, भीतर से उखड़ा हुआ है, भीतर अशांत है, तो बाहर उसके कर्म कैसे होंगे? ढीले ढाले होंगे, भूल जाएगा, खुद भी असंतुष्ट होगा, कुछ का कुछ बोल देगा। जैसे पेड़ होता है, उसकी जड़ नीचे जमीन में मजबूत है, मजबूत है ना, तो वो क्या करता है, उसकी शाखाएं हिलती हैं, ठंडी हवा आती है, छाया भी देता है, अंदर से मजबूत है, इसलिए बाहर से लचीला है, कितना भी हिल ले लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें मजबूत ना हो, उसका क्या हाल होगा? हवा आएगी तो वो किसी को छाया या ठंडक या हवा थोड़े दे सकेगा, वो तो उखड़ जाएगा। तो जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत है, ऐसे भीतर से हम अपनी स्थिति में मजबूत हैं, स्थिर हैं, एक रस। ये है शांति की शक्ति। दूसरे शब्दों में हम इसे योग बल कह सकते हैं, और योग का अभ्यास तो हम प्रतिदिन करते हैं। लेकिन योग का अभ्यास निरंतर हो और कर्म करते हुए भी हो, और योग के समय की गिनती ना की जाए। जैसे बाबा कहते हैं, आप योगी जीवन वाले हो, योग के घंटे नहीं हमको जीवन में गिनती करने, लेकिन योगी जीवन है। खाते भी योगी जीवन है, पीते भी योगी जीवन है, चलते भी योगी जीवन है। अब जैसे डायमंड हाल है, इसमें से एक साथ 20,000 लोग बाहर निकलते हैं, सबके सब योग युक्त हो तो क्या होगा, कितना शांति से निकलेंगे 20,000 लोग भी। तो निकलते समय हमारा योग प्रत्यक्ष हो, बैठते समय हमारा योग प्रत्यक्ष हो, भोजन लेते समय हमारा योग प्रत्यक्ष हो, खाना खाते समय हमारा योग प्रत्यक्ष हो। हम खा भी शांति की शक्ति में रही हैं, ले भी शांति की शक्ति के साथ रही हैं, तो कर्म में शांति की प्रत्यक्षता हो। बाबा ने कहा दुनिया में शक्तियां तो और भी हैं, जैसे धर्म की शक्ति है, राज्य की शक्ति है, विज्ञान की शक्ति है, लेकिन बाबा ने कहा ये सब शक्तियां नाम की शक्तियां हैं, अभी काम की नहीं। इनका नाम तो सत्ता है, धर्म सत्ता, लेकिन इसके पास कोई सत्ता अभी बची नहीं है। राज्य सत्ता, उसके पास अभी कोई सत्ता बची नहीं है। रामायण में एक मिसाल आता है कि जब राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य सौंपा किष्किंधा का, तो सुग्रीव को बड़ा वैराग आया। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, अपने भाई की हत्या करवा करके और मैं इस राज सुख को भोगूं, मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। मेरा मन करता है मैं भगवा कपड़े पहन करके सन्यास ले लूं और शेष जीवन को आपकी स्मृति में गुजारूं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा मन बड़ा उपराम हो गया है। तो श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, हे सुग्रीव, जिसका मन वैरागी हो जाए उससे बढ़िया राजा और कौन होगा? सबसे अच्छा राजा वही होता है जो वैरागी होता है। जिसको सुख भोग की लालसा होती है वो तो राजा क्या बनेगा, जिसको वैभवों की, जिसको ऐश्वर्य की लालसा है वो क्या राजा बनेगा। इसलिए तुम्हारी ये जो मनोभूमि है ना, ये राजाई के लिए बहुत अच्छी है। तुम इस मनोभूमि को बना के रखो और इसी मनोभूमि से राजगद्दी पर बैठते हुए भी अपने को सन्यासी समझो। देखो तुम प्रजा की कितनी अच्छी पालना करोगे, कितने अच्छे राजा सिद्ध होगे। तो राज सत्ता की ताकत किसमें थी? राजा होते हुए भी त्याग मूर्त, वैभव के बीच में होते हुए भी उपराम, जैसे राजा जनक को दिखाते। लेकिन आजकल राज सत्ता का क्या हाल है? कोई राजा क्यों बनना चाहता है? राज्य के ऊपर उसकी आंख क्यों लगी हुई है? मालूम है ना सबको, तो राज्य सत्ता नहीं लेकिन राज्य लिप्सा हो गई, सत्ता तो खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई। इसी तरह से धर्म की सत्ता, कुछ साल पहले तक भी धर्म में ताकत थी। धर्म की ताकत कौन सी होती है? पवित्रता, सत्य, अहिंसा, ये धर्म की ताकत। लेकिन आजकल लोग धर्म की ताकत किससे दिखाते हैं? शारीरिक बल, शस्त्रों का बल, वाक बल, क्या ये धर्म का बल है? कुछ समय पहले तक भी धर्म में बल था। जैसे हम सब ने रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में सुना है, कहते एक बार वो जहां बैठा करते थे उस खटिया या जो भी उनकी गद्दी होगी उसके नीचे विवेकानंद ने एक रुपया रख दिया, सिक्का। उन दिनों तो चांदी के सिक्के चलते होंगे, चांदी का सिक्का रख दिया। तो जब वो बैठने लगे ना, बैठे ना उसके ऊपर, तो बड़े बेचैन हो गए, दाएं देखें बाएं देखें जैसे कुछ चुभ रहा हो। और उसके बाद वो बैठक की चद्दर या जो भी गद्दी थी उसको हटा करके देखा तो उसके नीचे से सिक्का निकला। तो विवेकानंद की तरफ देख करके उन्होंने बोला, ठीक है, गुरु की अच्छी तरह से परीक्षा ले लेनी चाहिए। इतनी अनासक्ति, एक रुपया रखा वो भी चुभ गया। कितनी ताकत होगी उस व्यक्ति में और कितनी पवित्रता थी उसमें। बहुत लोगों ने उसकी परीक्षाएं ली लेकिन पवित्रता के मार्ग में इतनी पवित्रता, इसलिए कहते हैं माँ काली, शारदा, सब की सब उसके ऊपर कुर्बान थी। बाबा भी, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी प्रत्यक्षता कराने के लिए मैं बंधायमान हूं। तो भक्ति मार्ग में भी या धर्म के मार्ग में भी जिनमें पवित्रता का बल रहा उनको संसार के लोगों ने बहुत मान दिया और उनसे लोगों को प्राप्ति भी हुई। लेकिन ऐसे सन्यासी कितने और आज के जमाने में कितने? तो धर्म की सत्ता कहां गई? यहां भी बहुत सारे सन्यासी आते ही हैं तो बेचारे बहुत सारी बातें सुनाते ही हैं आश्रमों की। कई बार आपने ज्ञानमृत में भी अनुभव पढ़े होंगे। धर्म की रक्षा शांति की शक्ति से, अहिंसा की शक्ति से होती है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं? तीर तलवार देखते हैं। तो नहीं रही ना, धर्म की भी नींव गई ना, शक्ति गई ना। और तीसरी है विज्ञान की सत्ता। विज्ञान का उद्देश्य क्या था? प्रकृति को इस तरह से यूज किया जाए कि मनुष्य को सुख मिले। जितने भी संसाधन है वो मानव जाति को सुख देने के निमित्त बने, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और इनसे हमारा शरीर बनता है। विज्ञान ने सोचा मैं आयु भी लंबी कर दूं, बुढ़ापे को भी रोक दूं, पानी को भी स्वच्छ रखूं, हवा को भी गंदा ना होने दूं। प्रयास तो बहुत किए गए लेकिन बेचारे वैज्ञानिकों के सारे समीकरण उलट जाते हैं। वो करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक है उसके पास शांति की शक्ति का अभाव है। रियल शांति की शक्ति एक होती है एकाग्रता। एकाग्रता तो कई प्रकार की है लौकिक रीति से, लेकिन जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ साइलेंस, वो तो तब मिले जब खुद का भी यथार्थ ज्ञान हो। और जो टावर ऑफ साइलेंस है उसका भी यथार्थ ज्ञान हो। उस ज्ञान के अभाव में पदार्थ के ऊपर मन को एकाग्र करते हैं या किसी दिशा के ऊपर मन को एकाग्र करते हैं तो उसे अल्पकाल के लिए भले मन टिकता होगा लेकिन टावर से जो पावर आनी चाहिए वो पावर तो अंदर में नहीं आती है ना। इसलिए विज्ञान भी मानव जाति को वो नहीं दे पाया जिसकी मानव जाति को कामना थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संसार की सारी सत्ताएं जब मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं, तो मनुष्य किसकी तरफ अपनी नजर दौड़ाता है? भगवान की तरफ। और भगवान के साथ ये कार्य कौन करेगा? अकेला बाबा करेगा क्या? बाबा के साथ, बाबा ने कहा आप बाबा के साथ भी हो और बाबा के साथी भी हो। तो शांति की शक्ति संसार को देने का कार्य बाबा के साथ साथ हम बच्चों को भी करना है। इसके लिए हमें खुद मास्टर टावर ऑफ साइलेंस बनना है। और जैसे हमने शुरू में कहा, एक एक बूंद से पानी कितना इकट्ठा हो जाता है, साइलेंस पावर एकत्रित करने का हमें पर्सनल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे गरीब आदमी धन इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाता है, उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, अपने आप अपनी योजना बनाता है, मैं इसमें से बचत करूंगा, इसमें से बचत करूंगा। तो हमको हर एक को अपनी व्यक्तिगत योजना बनानी पड़ेगी। जब हम बोलते हैं तो हमको ये चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं ये जो शब्द बोल रहा हूं, क्या इसके बोले बिना मेरा काम चल सकता है? सारा दिन में अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछें, तो मैं समझती हूं बहुत लोगों का सबका चार्ट अलग अलग होगा, लेकिन मेजॉरिटी शब्द ऐसे होंगे जिनके लिए हम ये कह सकें कि हाँ, इनको बोले बिना हमारा काम चल सकता था। निकलेंगे ऐसे? आप भी सहमत हैं इस बात से? बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे जिनको बोले बिना हमारा काम चल सकता था। तो वो बचत की स्कीम में है। जैसे धन के बारे में हम क्या कहते हैं, ये वाला खर्च मैंने फालतू किया, ये वाली चीज खरीदे बिना भी मेरा काम चल सकता था। खरीदने के बाद कई बार सोचते हैं ना, ये वाला कपड़ा नहीं खरीदते तो अच्छा था, ये वाली चीज नहीं खरीदते तो अच्छा था। तो ऐसे ही शब्दों के बारे में पहले हम योजना बनाएं। अगर हम ये ना बोलें तो हमारा काम चल सकता, और बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता, बहुत अच्छे से चल सकता। जब हम शब्दों के बारे में ऐसी योजना बनाएंगे, उसके बाद संकल्पों के बारे में बना सकेंगे, क्योंकि संकल्प ज्यादा सूक्ष्म है, पहले तो स्थूल काम करेंगे। और जब संकल्पों के बारे में भी योजना बनाएंगे ना, तब तो वंडर रिजल्ट निकलेगा। कितने सारे संकल्प हैं जिनके बिना हमारा बहुत अच्छे से काम चल सकता है, और ही वो संकल्प हमारा काम बिगाड़ते हैं। और जब वो बिगाड़ने वाले संकल्प बनाने में लग जाएंगे, तो बनाने की शक्ति कितना गुना हो जाएगी? बहुत गुना हो जाएगी। जैसे एक हथौड़ा है, उस हथौड़े से हम दीवार को गिराते भी हैं, नुकसान का काम भी करते हैं, और उसी हथौड़े से नींव के पत्थर को कूटते भी। तो अगर वो हथौड़ा दीवार को लगे तो नुकसानकारक, और वही हथौड़ा नींव के पत्थर को कूटने में लगे तो काम का। तो वही संकल्प अगर व्यर्थ जाए तो शांति की शक्ति बह गई। और उसी संकल्प को मोड़ करके अगर जमा के खाते में लगाया जाए तो शांति की शक्ति निर्मित हो गई। तो ये काम हमको करना है। ये काम कौन करेगा? कोई और करेगा क्या हमारे लिए? कई काम कई लोग दूसरे भी कर सकते हैं। जैसे पानी पीना हो, हम ना उठ सके तो किसी को कह सकते हैं भाई पानी पकड़ा दो, और हाथ को कोई तकलीफ हो तो हम कह सकते हैं भाई तुम जरा होठों को लगा दो। तो कई काम हम दूसरों से करवा सकते हैं, लेकिन जो संकल्प फालतू हैं, बिना काम के हैं, यूजलेस हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उन संकल्पों को बदल करके समर्थ बनाया जाए, ये काम कौन करेगा? कोई और करेगा क्या? हमारे घर का कोई व्यक्ति, जाना पहचाना, हमारी कोई सहेली, मित्र, दोस्त, या पैसे दे करके किसी से करवाएंगे क्या? जैसे भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई मृत्युंजय पाठ करवाना है, महामृत्युंजय पाठ। पंडित जी कहते हैं ठीक है 1100 रुपए दे देना, मैं करके चला जाऊंगा। पर वो तो भक्ति मार्ग का सिद्धांत है ना। ज्ञान मार्ग में भाई 1100 रुपए दे देना, मैं आपके व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बना दूंगा। है क्या कोई ऐसा? तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप पर अटेंशन देना पड़ेगा, एकांत प्रिय बनना पड़ेगा, शांति की शक्ति के महत्व को रियलाइज करना पड़ेगा, और रियलाइज करने के बाद उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। ऐसा करते हुए जो बाधाएं आएंगी उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। और बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम बाबा के, 1000 कदमों से बाबा मदद करेगा। लेकिन मैं ये दृढ़ संकल्प करूं कि मुझे इस शांति वन को शांति धाम बनाने में सहयोग देना है, मुझे सहयोग देना है। मुझे ये नहीं कहना देखो वो दूसरा कितना बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, नहीं। मैं अपनी शांति की शक्ति को इतना बढ़ाऊं कि शांति के वाइब्रेशन इतने फैलें कि किसी का बोलने को मन ही ना करे। मैं मेरे हाथ में जो काम है वो करूं, दूसरे को रोकना मेरे हाथ में नहीं है ना, लेकिन अपने आप को रोकना वो तो मेरे हाथ में है। तो पहले हम वो काम करें जो अपने हाथ में है, और वो वाला काम करेंगे ना तो दूसरा काम भी अपने आप हो जाएगा। तो अभी आप सभी यहां रहेंगे, जब तक हम मधुबन में रहते हैं, हम सब मधुबन निवासी हैं, और जब हम मधुबन में रहते हैं तो पिछला तो सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे तो मर्जीवा बन के भूल जाते हैं, लेकिन यहां आके तो स्पेशली भूल जाती। तो पीछे जो हुआ उसको बिंदी लगा देनी है, आज तक जो हुआ उसको बिंदी लगाना, और आज से ये पक्का संकल्प करना कि मेरे को जो भी देखे उसको मेरे से शांति के वाइब्रेशन आए, जो भी मुझे मिले उसको मेरे द्वारा शांति की अनुभूति हो। बस इस बार मुझे ये नया काम करना है, शुरुआत यहां से करनी है और फिर बाद में करते ही जाना है, एक्सपेरिमेंट यहां से करना है और फिर आगे करते ही जाना है। बाबा ने मम्मा और बाबा का एग्जाम्पल दिया। मम्मा बाबा ने शांति की शक्ति का कितना अनुभव किया, जब उनकी बातें सुनती हैं तो कमाल लगती है। ना तो इतना विस्तार था, ना इतना संगठन था, और ना ही कोई वाहवाही करने वाला था, लेकिन फिर भी एक बल एक भरोसे, कितना भविष्य के लिए शांति की शक्ति से हम सब के लिए वातावरण भी बनाया और अपने लिए भी कितना खाता जमा किया। आज भी देखो बाबा के कमरे में हम जाते हैं कितने वर्षों के बाद, लेकिन शांति की वही फुहार, शांति का वही स्रोत हमको नजर आता है। कितना बाबा ने अपने मन को साधा, तो हम भी तो उसी बाबा के बच्चे हैं ना। और जैसे आज सुबह दादी सुना रही थी, मम्मा के सामने कोई जाएगा नेगेटिव सोच नहीं सकता, उसकी नेगेटिव सोचने की शक्ति को जैसे चूस लेती थी, ऐसी तपस्या संसार के इतिहास में ना कभी सुनी किसी ने, लेकिन हम बच्चे तो उसका अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने कहा शांति की शक्ति सेवा के क्षेत्र में बहुत चाहिए। आजकल हम वाणी के द्वारा बहुत सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बाबा की मुरलियों में हमने सुना है, और केवल सुना नहीं, हम सब ने उसका जरूर अनुभव भी किया है। जिस व्यक्ति को आप ज्ञान सुनाना चाहती हैं, पहले दिन से उसको शांति के वाइब्रेशन दो। जिस स्थान पर आप सेवा करना चाहती हैं, कुछ दिन पहले से उस स्थान को शांति के वाइब्रेशन दो। और दोनों प्रकार की सेवाओं के अंतर को महसूस करो। अचानक जाकर के किसी को ज्ञान सुनाया और एक या दो दिन, इतना समय ना भी हो तो भले घंटा भर किसी को पीस के वाइब्रेशन भेजने के बाद उसको ज्ञान सुनाए, दोनों में कितना अंतर होगा, जरूर आपने अनुभव किया होगा। रात दिन का अंतर होता है। जिसको हमने शांति के वाइब्रेशन दिए होंगे ना, वो व्यक्ति हमें ऐसे रिसीव करता है जैसे हमारी उससे बहुत पुरानी जान पहचान है, जैसे हमारा वो बहुत अपना है, और हमारी बातों पर वो ऐसे सहज विश्वास करता है जैसे ये जो कह रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। बहस करना या बात को काटना वो होता ही नहीं। और अचानक जा करके किसी को सुनाते हैं तो उसमें अंतर आता है ना। ऐसे ही सामूहिक सेवा करते हैं, उसका भी यही परिणाम है। जितने भी लोग आएंगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, पहले से हमने की होगी तो, अचानक करेंगे तो कई बाधाएं आएंगी। तो शांति की शक्ति प्रत्यक्ष फल देती है, दूसरों के मन को मोड़ती है, प्रभु की ओर मोड़ती है, अच्छाई की ओर मोड़ती है। और दूसरा बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में शांति की शक्ति का महत्व इसलिए भी है, जितनी जितनी शांति की शक्ति होगी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, और क्लीन और क्लियर बुद्धि में कैचिंग और टचिंग पावर होगी। तो हमें क्या चाहिए सफलता के लिए? कैचिंग और टचिंग पावर तो चाहिए ना। कई बार जैसे कई भाई बहन अनुभव सुनाते हैं, हम अकेले सफर कर रहे थे, रात के 12 बज गए ट्रेन में, लेकिन ट्रेन लेट हो गई और जो स्टेशन 12 बजे आना था वो आया ही नहीं, समझो 2 बजे आया, कोई स्टेशन 3 बजे आया। तो जिस बात को बुद्धि में रख करके सफर कर रहे थे, भाई 12 बजे वो स्टेशन आएगा या 12:15 आएगा, वहां उतरना है, सब लोग सोए पड़े हैं, कोई बताने वाला नहीं है, अंधेरा है, कैसे पूछें, किसी से पूछा उसने गलत बता दिया, क्या करें? तो ऐसे समय में योग बल काम आता है। और बताते हैं कई भाई बहन कि हम बाबा की याद में बैठ गए, एकदम क्लीन और क्लियर बुद्धि, और जैसे परम धाम में बाबा को देख रहे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, हलचल नहीं है, चिंता नहीं है, बाबा की सेवा है, बाबा मदद करेगा, बाबा साथ है, हमारी हिम्मत भी साथ है। एक से पूछा उसने जैसे कुछ का कुछ बता दिया, वो तो नींद का समय होता है ना, या किसी को पता नहीं है, बाहर जा करके देखा जगह पहचान में नहीं आ रही है, ट्रेन तो बहुत कम रुकती है, 30 मिनट, कई स्टेशन ऐसे भी होते, लेकिन जैसे स्टेशन आता है तो एकदम फोर्स से संकल्प आता है कि बाहर निकलो, और जैसे ही गेट के पास जाते हैं किसी से पूछते हैं ये वो वाला स्टेशन है, कहते हैं हाँ ये वही वाला है, और उतर जाते हैं। तो कोई मददगार नहीं था, समय ऐसा है, वातावरण ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, अकेले हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान मददगार है। लेकिन मददगार कब बना? जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है, और क्लीन और क्लियर तब होती है जब हमारा निश्चय पक्का। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। और निश्चय है तो लाइन क्लीन और क्लियर है, क्लीन और क्लियर है तो टचिंग और कैचिंग आती है और विश्वास होता है बाबा मेरे साथ। ऐसे ही कुछ दिन पहले हमने मैगजीन में एक अनुभव डाला था, आप सबने पढ़ा होगा। एक छोटा बच्चा दिल्ली में, उसको किडनैप कर लिया स्कूल के आगे से, मुंह पे पट्टा बांध दिया, बेचारे को मारा भी, बोल भी नहीं सकता, लेकिन माँ बाप के साथ रोज आश्रम पे जाता था। 12 साल का बच्चा था, तो समझ तो आ गई, आजकल के बच्चे इतना तो समझते ही हैं कि मेरे को पकड़ लिया है, इतने तो समझदार हैं आजकल के बच्चे, लेकिन छूटे कैसे। तो क्योंकि रोज बाबा को याद करता था तो बाबा को कहता रहा कि बाबा अब तो यहाँ ना पुलिस पहुंच सकती है, ना मेरा टीचर, ना मेरे माँ बाप, पर आप पहुंच सकते हो, अब आप बताओ मैं क्या करूं। आप कहते हो मैं मुसीबत में बच्चों की रक्षा करता हूं, आप बताओ ना मैं क्या करूं। बेचारे का मुंह बंद है लेकिन मन तो चालू है ना, मन को कोई बंद कर सकता है क्या। तो मन ही मन में बात करता रहा करता रहा। कुछ दूर ले जाकर के उन लोगों ने पूछा, मुंह का पट्टा खोल के एक ने पूछा कि तेरा पिता क्या करता है। तो बाबा के साथ तो उसकी लाइन जुड़ी हुई थी और बच्चे तो वैसे ही मन के सच्चे होते, तो बाबा के साथ लाइन भी जल्दी जुड़ गई। तो उसने कहा मेरा पिताजी तो चाय का ढाबा चलाता है। तो दूसरे ने कहा अरे तूने ढाबे वाले के लड़के को पकड़ लिया, 2 दिन में कहां से मिलेंगे 14 लाख, धक्का मार इसको। तो थोड़ी गाड़ी को धीमा किया और वो सड़क के ऊपर थोड़ा उजाड़ में बेचारे को धक्का मार दिया, वो कंक्रीट की सड़क पे गिरा, घुटने थोड़े थोड़े छिल गए, और कोई ऑटो आ रहा था उसको पकड़ करके आ गया। घर में आया, तब तक तो स्कूल में घर में सब जगह खबर फैल गई थी। पूछा तो उसने सारी कहानी सुनाई, तो उसको पूछा कि भाई तेरा पिताजी तो बिजनेसमैन है और तेरी माँ स्कूल में टीचर है और इकलौता लड़का, तो तूने ये क्यों बोला, तो क्यों बोला उसने ऐसा है? मौके पे मदद की ना, इसलिए कहते हैं जो तीर तलवार और भाले में ताकत नहीं होती है वो टचिंग में ताकत होती है। मान लो पुलिस छुड़वाने आ जाए, वो लोग पुलिस बदले की आग में बच्चे को मार देंगे, क्या पुलिस बच्चे को बचा सकती है, माना कोई भी शक्ति दुनिया की, लेकिन एक टचिंग ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के, शोर शराबे के, बिना किसी हथियार और पैसे के बच्चे को बचा दिया। तो कितनी ताकत है साइलेंस में, कितनी ताकत है बाबा के साथ मन को जोड़ने में। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आपका कदम कदम पर रक्षक हूं, अंग रक्षक हूं। दुनिया में जिनके हजारों हजार अंग रक्षक होते हैं उनका भी क्या परिणाम निकलता है, उनके भी अंगों का नुकसान हो जाता है, लेकिन या तो सर्वशक्तिवान बाबा हैं तो ना अंगों का कुछ हो सकता ना मन का कुछ हो सकता है। बाबा ने कहा बच्चे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। बाबा ने कहा देखो जब कोई व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है ना, जैसे मजदूर है बहुत बोझा ढो रहा है, थक गया तो क्या कहेगा, बोलेगा मैं थोड़ा सांस तो ले लूं। दौड़ने वाला है दौड़ रहा है, बोलेगा मैं थोड़ा सांस तो ले लूं, तो थोड़ा बैठने की कोशिश करता है। तो बाबा ने कहा काम करते करते जब आपका मन भी बहुत थक जाता है ना, तो आप भी उसको बिठाने का अभ्यास करो, बिठाओ उसको, शांति दो। बिठाने का मतलब क्या है, परम धाम में ले जाओ। बैठने की बढ़िया जगह तो यही वही है, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इधर खिसक जा उधर खिसक जा, बाकी सब जगह मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें, परम धाम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी बात को बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा था कि टॉप की दो स्टेजेज है, एक तो परम धाम टॉप का स्थान जहां से सब कुछ दिखाई देता है, तो जब भी समय मिले उस टॉप की स्थिति में पहुंच जाओ, परम धाम में पहुंच जाओ। इसी बात को बाबा एक और तरीके से कहता है, तीन बिंदु लगाओ, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। अगर ड्रामा का बिंदु नहीं लगाएंगे ना, तो अभी तक जो घटनाएं घटी उनसे पीछा नहीं छूटेगा। ड्रामा का बिंदु लगा दो, अब तक जो बीता बिंदु, बस फिर घटनाओं से पीछा छूट जाएगा। मैं बिंदु, अगर मैं बिंदु नहीं बनेंगे तो शरीर से पीछा नहीं छूटेगा। और बाबा बिंदु, बाबा बिंदु नहीं लगाएंगे तो संबंधों से पीछा नहीं छूटेगा। बाबा बिंदु में सर्व संबंध समाये हुए हैं ना, तो मन को घटनाओं से, शरीर से, संबंधों से और परम धाम को याद नहीं करेंगे तो इन पदार्थों से पीछा नहीं छूटेगा। दुनिया तो चीजों और पदार्थों से भरी पड़ी है, शरीर, शरीर के संबंध, पदार्थ और बीती हुई घटनाएं, इन चारों चीजों से मन को मुक्त करने का साधन है परम धाम में बैठो और तीन बिंदु लगाओ, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, अब तक जो बीता वो भी बिंदु या ड्रामा का बिंदु। तो इस स्थिति में हमारे अंदर इतनी शक्ति जमा हो जाएगी, जैसे ऐसे लगेगा मैं टॉप आत्मा हूं, स्थिति भी टॉप, स्थान भी टॉप और जिसके साथ बैठे हैं वो भी टॉप, तीन टॉप हो गए। मैं आत्मा टॉप की स्थिति में हूं और वहां बैठ करके हमारे भीतर जो शांति भरेगी, इतनी डेड साइलेंस की अनुभूति होगी, आत्मा को ऐसे लगेगा जैसे कोई पावर का झरना मेरे ऊपर आ रहा है, पावर का कोई कोई फाउंटेन जैसे मेरे ऊपर पड़ रहा है और जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत समर्थ आत्मा हूं। दिखेगा उसे केवल बिंदु भीतर के नेत्र से, लेकिन बिंदु को देखते देखते बड़ी अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा। और ये स्थिति हम एक बार बना लेंगे ना, तो फिर जब भी संकल्प करेंगे तुरंत बन जाएगी। जैसे एक बार देखी हुई चीज दोबारा देखना चाहिए तो झट दिख जाती है ना, अंदर में उसकी पिक्चर स्टोर हो जाती है। तो एक बार इसका अनुभव करने के बाद वो अनुभूति अंदर में स्टोर हो जाती है और हम जब चाहें उसको इमर्ज कर सकते हैं। और इस अनुभूति के बाद जब हम कर्म में आते हैं ना, तो भी हमको ऐसे ही लगेगा जैसे भले शरीर नीचे है लेकिन मैं अभी भी उसी अनुभूति में हूं। मन नहीं करेगा उससे हटने के लिए। कमाई हो रही है ना, जैसे कमाई हो रही हो तो आदमी का छोड़ने को मन नहीं करता। तो आत्मा को अंदर में महसूसता आती है कि मुझे बहुत कमाई हो रही है, मुझे बहुत कमाई हो रही है, मैं अपनी स्थिति से हटूं नहीं, तो वो देखते हुए, बोलते हुए, कर्म करते हुए भी उसी के रस में लीन रहती है। तो एक तो बाबा ने कहा ये टॉप स्थिति चाहिए और दूसरा बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप की स्टेज कौन सी है, टॉप का युग कौन सा है, संगम युग। एक तरफ सतयुग, दूसरी तरफ कलयुग, लेकिन टॉप में संगम युग। तो बाबा ने कहा संगम युग पर जब आप खड़े हो जाते हो ना, तो आपको पूरा सृष्टि चक्र दिखाई देता है। और बाबा ने कहा जब उस स्टेज पर खड़े होते हो तो किसके साथ खड़े हो, संगम युग में किसको दिखाते? ब्रह्मा और सरस्वती को, सृष्टि के जो टॉप एक्टर है उनके साथ हम खड़े हुए। तो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मैया की स्थिति कैसी थी? वो तो टावर ऑफ पीस थे और मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं और साक्षी होकर के देख रहा हूं, क्योंकि संगम युग पर खड़े होना माना साक्षी स्टेज। कितनी सारी स्थिति एक साथ बनती है, मेहमान की स्थिति, साक्षी स्थिति, उपराम स्थिति, मम्मा और बाबा के संग की स्थिति, टॉप की स्थिति, नॉलेजफुल की स्थिति, कितनी सारी स्थितियां एक साथ बनती हैं जब हम संगम युग पर खड़े होते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते हो तो वहां खड़े हो जाओ, कर्म भले करो लेकिन मन को वहां खड़ा कर दो, तो अपने अंदर शांति की शक्ति भर जाएगी। वर्तमान समय दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, चीजों की कमी हो रही है, जिसको कहते हैं खींचतान हो रही है। और आप सब समाचार सुनते ही हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हीट बढ़ रही है, आजकल तो इस प्रकार के समाचार बड़े कॉमन हो गए हैं। और लोगों को चिंता हो रही है कि ये स्थिति कुछ दिन और चलने के बाद इतनी भयानक हो जाएगी कि ऑक्सीजन मिलनी बंद, स्वच्छ पानी मिलना बंद, तो उस स्थिति में क्या होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब ये परिस्थितियां निर्मित होंगी तो अनाज की कमी होगी, अनाज की जब कमी होगी, खाने की तो बेसिक चीज अनाज ही है ना, तो आपस में छीना झपटी शुरू होगी। और जब छीना झपटी शुरू होती है तो क्या होता है, वही छीना झपटी मार काट और ग्रह युद्ध का रूप धारण कर लेती है। तो बाबा ने कहा ये सब इस तरह से शुरू होकर के फिर बड़े रूप में चला जाएगा। अभी भी बाबा ने कहा रिहर्सल कहीं कहीं हो रही है, पहले रिहर्सल होता है उसके बाद फिर असली रूप सामने आता है। तो बाबा ने कहा उस समय आपकी एकत्रित की गई शांति की शक्ति काम आएगी। जैसे हमने 63 जन्म भक्ति की ना, कितने जन्म भक्ति की, 63 जन्म, 63 जन्म की भक्ति अब काम आई। कैसे काम आई? भक्ति का फल भगवान मिला। एक दिन की भक्ति का फल तो नहीं है, एक जन्म की भक्ति का फल तो नहीं है, एक जन्म वाले भक्त भी हैं, दो जन्म वाले, चार जन्म वाले भी हैं, लेकिन उनको क्या फल मिला, क्या उनको भगवान मिला? बाबा ने कहा मैं पुराने भक्तों को मिलता हूं, जिनकी भक्ति पूरी हो गई उनको मिलता हूं। तो भक्ति 63 जन्म की तब भगवान मिला। और शांति की शक्ति कितनी जमा करेंगे तब उसका फल मिलेगा? एक दिन की शांति की शक्ति का फल निकल आएगा क्या? कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन इतना फल निकले कि उस मार काट के समय में मैं लोगों को शांति अनुभव करवा सकूं, पहले तो मैं खुद शांत रह सकूं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि कई तो ऐसे कमजोर दिल होते हैं, एक धमाका होता है और बेहोश हो जाते हैं, कई ऐसे दृश्य देख करके समाचार सुन करके ही गश खा जाते, कमजोर दिल है ना, शांति की शक्ति का अनुभव किया नहीं ना, साक्षी बनने का अभ्यास किया नहीं ना। तो बाबा ने कहा पहले तो ये चाहिए कि मैं ऐसे दृश्य देख सकूं और देखते हुए भी स्थिर रह सकूं, और फिर जब हम स्थिर होंगे तो दूसरों को भी स्थिरता का बल देंगे, तो वो कब जमा करेंगे? अभी तो हम खुद ही हिल जाते हैं, है ऐसा? चेकिंग करना दिन में एक बार, दिन में कितनी बार हिलते हैं, और ये भी चेकिंग करना कि दिन में कितनी बार परिस्थितियों में अडोल रहे, दोनों चेकिंग करना। अगर अडोल रहने वाला पलड़ा भारी होगा ना, तो आत्मविश्वास पैदा होगा, और मान लो हिलने वाला पलड़ा भारी है तो पुरुषार्थ करने की प्रेरणा आएगी। जैसे हमारा एक टॉपिक हुआ करता था ना, समय की पुकार, आध्यात्मिकता, तो अभी समय की पुकार वास्तव में क्या है? शांति की शक्ति। आध्यात्मिकता का तो बहुत विस्तार हो गया ना, लेकिन उसमें भी सार की बात कौन सी है? शांति की शक्ति। सर्व समस्याओं का समाधान शांति की शक्ति, भाव स्वभाव का समाधान शांति की शक्ति। तो ये रामबाण औषधि, जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, सारे रोगों की एक दवा, तो सारी समस्याओं की एक दवा कौन सी? शांति की शक्ति। ओम शांति।
जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से, शिव से शक्ति ले बदल दे। शिव से शक्ति ले बदल दे ये जमीन और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का बन सचे तुझको।